परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस अध्ययन माला में इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस द्वारा लिखी गई कुलुसियों नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन माला से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने कार्यों को करते हुए प्रभु की निकटता में हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से कुलुसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। यह पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई है जो रोम के बंदी गृह से उसने लिखा है और इस पत्री में अब तक हम देख रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा ताकि वह हमारे बदले में अपने आप को बलिदान करे और हमें उसी के द्वारा उद्धार प्राप्त करना है और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है क्योंकि वह इस समय स्वर्ग में विराजमान है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। हम धन्यवादित हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग जगहों में रहकर इस समय आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक भाई बहन आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। और हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या कर्ज से दबे हुए हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। प्रभु जी, आप उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें, उनकी सहायता करें, अपने वचन से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ध्यान दीजिए, व्यभिचार अर्थात अनैतिकता। क्या यह आपका पाप है? हम धोखा न खाएं। आज अनेक जन इस पाप को छिपाए हुए हैं और वे समर्पित मसीही विश्वासी होने का दावा करते हैं। पौलुस इसकी खुली चर्चा करते हुए कहता है कि हमें अपने पार्थिव अंगों को मार डालना है। क्या आपकी आंखें आपसे पाप करवाती है? क्या आपकी आंख में लालच है या अभिलाषा है? उन आंखों को मार डालो और उन्हें यीशु की आंखें बना दो कि उसे निहारती रहे। मेरे प्रियो, इससे अवश्य परिवर्तन आएगा, है या नहीं? जरूर आएगा। आगे हम देखते हैं अशुद्धता, विचारों की, शब्दों की, आंखों की, अंग विन्यास की और यहां तक कि चुटकुलों की भी। और तब हम देखते हैं दुष्कामना, अनियंत्रित मनोवेश और लालसाएं। मुझे कभी कभी कोई न कोई आकर कहता है, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मेरे मित्रों, पहले तो आपको उस स्थान में होना नहीं चाहिए था, और यह वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा रसोई में टॉफियां चुरा रहा था। उसकी माता ने आवाज सुनकर उसे पुकारा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं परीक्षा से संघर्ष कर रहा हूं। जी हाँ, परीक्षा का विरोध करने के लिए वह उचित स्थान नहीं है। यदि आपको टॉफियां खाने से दूर रहना है तो रसोई में ना जाएं। दुष्कामनाओं के साथ भी ऐसा ही है, जैसा कि लोगों का कहना है कि आग से मत खेलो। यदि आप आग से खेलेंगे तो निश्चय ही आप जल जाएंगे। पाप भी ऐसा ही है। तब हम देखते हैं बुरी लालसा, बुरी इच्छाओं को मार डालो। लोभ मूर्ति पूजा है। क्या पैसा आपका देवता है? क्या आपकी रुचि प्रभु यीशु से अधिक पैसों में है? ये प्रश्न दुखदायी हैं, परंतु हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसे परमेश्वर के लिए काम में लेना है। आज एक व्यक्ति अपनी महंगी कार में भागा जा रहा था। उसे किसी की चिंता नहीं थी क्योंकि वह शीघ्रता में था। हम मंदिरों में जाने वालों को देखते हैं और तरह तरह के पूजा वृत्तियों को देखते हैं, परंतु यह मनुष्य पैसों की पूजा में मग्न था। लगभग सभी लोग आज यही लालसा रखते हैं, लोभ के दास हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की लालसा करते हैं, उन्हें बहुत पैसा चाहिए। उन्हें पता नहीं कि इस संसार से वे कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, आज लोभ हमारे देश की समस्याओं की जड़ है। पहला थिमोथियुस की पत्री उसके 6:10 में पौलुस कहता है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जी हाँ, पैसा समस्या नहीं है। पैसा तो परमेश्वर की महिमा के लिए भी काम में आता है, परंतु कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी लाखों की लालसा करते हैं, जबकि उन्हें उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। वे मूर्ति पूजक हैं, पैसों की पूजा करते हैं। यदि वे मसीह में हैं तो वह हमारे जीवन में पहला स्थान रखेगा और हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का पहला स्थान मसीह है। कुलुसियों के पत्र 3:6 में हम पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण अर्थात उपरोक्त व्यक्त बातों के कारण सांसारिक लालसाएं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। मनुष्य न तो इन बातों से न ही मसीह को न जानने से पापी है, परंतु वह मन के कारण पापी है और पापी होने के कारण वह यह सब कुछ करता है। मेरे मित्रों, वह जीवन जो स्वर्गीय वस्तुओं अर्थात स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु की बातों की खोज में रहता है, उसका प्रमाण यहां हमारे नव जीवन द्वारा व्यक्तिगत पवित्रता और सहभागिता द्वारा प्रकट होता है। अतः हमें अपनी पुरानी अपवित्रता और पुरानी बुराइयों को छोड़ देना है। कुलुसियों की पत्री 3:7 में लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, आज मसीह यीशु के पीछे चलने वाले कभी पापों में जीवन निर्वाह कर रहे थे। मैं आशा करता हूं कि हम अब ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम मसीह को नहीं जानते थे तब हम पाप में जीवन जीते थे, लेकिन अब हम मसीह को जान गए हैं तो यह उचित है कि हम पाप में जीवन न जिए। मेरी भेंट एक करोड़पति से हुई जिसने स्वीकार किया कि उद्धार पाने से पूर्व वह सर्वशक्तिमान रुपये का उपासक था, परंतु मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद, उसे जानने के बाद, उसने सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया। उसने करोड़ों रुपए कमाए थे और अब जो वह कमा रहा था वह प्रभु की सेवा में लगाना चाहता था। वह अब प्रभु यीशु की बातों की खोज में अपना मन लगाना चाहता था। मेरे मित्रों, क्या हम प्रभु यीशु को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं, या हम उन बातों में मन लगाए हैं जिनमें संसार जी रहा है और जिनके कारण परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है? हम परमेश्वर के क्रोध से बचने की आशा कैसे करेंगे? यदि आप मसीह में हैं तो आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे और आप सांसारिकता में व्यस्त नहीं होंगे। जी हाँ, आप परमेश्वर से उसके निकटता में आने के लिए प्रार्थना करेंगे, आप उसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुलुसियों की पत्री 3:8 में हम पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हमारा यह व्यवहार हमें वैसे ही उतार देना है जैसे हम कपड़े उतार देते हैं। मनुष्यों के कपड़े नाना प्रकार के होते हैं। पौलुस कहता है कि हम इन बुरी आदतों को वैसे ही उतार कर फेंकें जैसे हम अपने पुराने और गंदे कपड़ों को उतार देते हैं। आप उन्हें धोते नहीं हैं, आप उन्हें फेंक देते हैं। पहला है क्रोध। एक क्रोध धार्मिक होता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु फरीसियों के मन की कठोरता के कारण उन पर क्रोधित हुआ था। वह क्रोध पाप रहित था। हमारी समस्या तो यह है कि हम गलत बातों पर क्रोध करते हैं और क्रिया के द्वारा से हम हानि कर देते हैं। क्षमा न करने की आत्मा के कारण क्रोध भारी कोप बन जाता है। किसी ने कहा है कि वैर भाव जमा हुआ क्रोध है, यह पाला पोसा क्रोध है, यह क्रोध बदला लेना चाहता है, हिसाब बराबर करना चाहता है, चुकाना चाहता है। और तो पौलुस कहता है कि विश्वासी इसे गंदे वस्त्र के समान उतार कर फेंक दे। यह व्यवहार प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम अपने उन गंदी आदतों को अपने जीवन से दूर कर दें, उसे छोड़ दें, अपना बदला हुआ जीवन जो मसीह में है उसे स्वीकार कर लें। तब हम आगे देखते हैं निंदा। निंदा दो प्रकार की होती है, परमेश्वर की निंदा और मनुष्य की निंदा। परमेश्वर की निंदा में परमेश्वर का नाम अपमानित किया जाता है। उसका नाम व्यर्थ लेना ही निंदा नहीं है, उसकी छवि को गलत प्रकट करना भी उसकी निंदा है, उसे ना मानना भी उसकी निंदा करना है। मुझे एक महिला ने पत्र लिखा कि उसकी 3 पुत्री की मृत्यु के कारण अब वह परमेश्वर से घृणा करती है। किसी ने उसे हमारी एक छोटी सी पुस्तक भेंट में दी जिसे पढ़कर अब वह मसीह के पास है। उसे बोध हुआ कि वह केवल कलीसिया की सदस्य थी और उसे नया जन्म का अनुभव प्राप्त नहीं था। अतः किसी घटना के कारण आप परमेश्वर से घृणा करें तो वह उसकी निंदा है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, आपके निकटता में रहना चाहता है, लेकिन आप उसे दोष लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप किसी विश्वासी की भी निंदा कर सकते हैं जब आप उसके बारे में कोई झूठ बात कहते हैं? मुझे आज भी स्मरण है कि एक व्यक्ति ने किसी प्रचारक को शैतान कहा था। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान के बारे में अनुचित बात कहना भी निंदा है। आप निंदा करने के दोषी हैं। तब हम देखते हैं मुंह से गालियां बकना, गालियां और गंदी बातें। मुझे बताया गया है कि कुछ विश्वासी समूह गंदे चुटकुले सुनाते और सुनते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि विश्वासी ऐसे शब्दों को काम में ले सकते हैं। कुछ विश्वासी वरन मैंने अगुओं को भी अपशब्दों का उपयोग करते हुए सुना है। मैं नहीं मानता कि आप परमेश्वर की संतान होकर ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे। हमें इन बातों को उतार फेंकना है, इसे गंभीरता से लेना है, ताकि हम अपने जीवन में इन गंदी बातों को प्रयोग में न लें। पौलुस यही कहता है कि कुलुसी के विश्वासी उन बुरी बातों को छोड़ दें और नई बातों को जो मसीह में है ग्रहण करें। हम आगे पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पौलुस किससे कह रहा है? वह विश्वासियों से कह रहा है क्योंकि उसने कहा तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या विश्वासी के लिए झूठ कहना संभव है? अति संभव है। और इसका अर्थ यह नहीं कि झूठ बोलकर आप उद्धार से वंचित हो गए। यदि ऐसा होता तो हम बहुत पहले ही अपने उद्धार से वंचित हो गए होते। इसका सरल सा अर्थ है कि आपने सिद्धता प्राप्त नहीं की है। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की संतान बनने के बाद अपने पुराने स्वभाव से मुक्त नहीं होते हैं। यह एक बार में खत्म नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे आप उसमें सिद्धता को पाते हैं। मेरे विचार में बच्चे का पहला पाप है झूठ बोलना। मुझे एक बच्चे की कहानी स्मरण आती है। वह एक दिन भागकर घर में आया और पुकार उठा, माँ माँ, हमारे घर के सामने से शेर गया है। उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटे वह शेर नहीं कुत्ता था, तुम्हें प्रभु यीशु से झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगनी होगी। उसने कमरे में जाकर क्षमा की प्रार्थना की और माँ के पास आया। माँ ने पूछा, तुमने क्षमा मांगी? उसने कहा, हाँ मैंने क्षमा मांग ली है। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि उसने भी उसे देखकर पहली बार तो शेर ही समझा था। झूठ हम में गहरी जड़ पकड़े हुए है और अनेक विश्वासी उसमें जी खोलकर आनंद लेते हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पुराने वस्त्र उतार देना ही पर्याप्त नहीं है, आपको नए वस्त्र भी पहनना होगा। प्रकृति को खाली स्थान अच्छा नहीं लगता है, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नया मनुष्यत्व धारण करना है। हमारे पुराने स्वभाव ने वर्षों हम पर राज्य किया है और हमने कुछ अभ्यास आत्मज्ञात कर लिए हैं। यही कारण है कि वस्त्र यहाँ एक प्रभावी शब्द है। हमने अपने कहने और करने को एक ढांचे में डाल लिया है जो एक निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दिखाता है। यदि मेरा हाथ आग का स्पर्श कर रहा है तो मेरी प्रेरक तंत्रिका तुरंत मस्तिष्क को संदेश देगी कि हाथ जल रहा है और मस्तिष्क संदेश भेजेगा, हाथ हटा। यह बहुत तेज प्रक्रिया है। इसी प्रकार हमारी आदतें होती हैं। मेरे प्रियो, मनोविज्ञान के अनुसार हम पुरानी आदतों को त्याग कर नई आदत डाल सकते हैं, परंतु विश्वासी के लिए यह और भी अधिक सत्य है क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य करता है। हमें नया मनुष्यत्व पहनना है। अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपको नया मनुष्यत्व अर्थात प्रभु यीशु को पहनना है। इस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु को इस संसार पर प्रकट कर पाएगी। तो आइए हम पढ़ें कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 11 पद में, उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना न खतना रहित, न जंगली न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ध्यान दें, न तो यूनानी रहा और न यहूदी। विश्वासियों की देह अर्थात कलीसिया में यूनानी और यहूदी सब एक हैं। कोई भी जात पात रंग रूप का भेदभाव नहीं है। पौलुस के युग में यह एक बड़ा अंतर था, न खतना न खतना रहित, यह भी एक धार्मिक विभाजन था, न जंगली न स्कूती। वे जो यूनानी नहीं थे उन्हें जंगली कहा जाता था। स्कूती सबसे अधिक पिछड़े हुए बर्बर जाति के लोग थे। स्कूतियां काले सागर के उत्तर का क्षेत्र था, वहां के निवासी उस युग में सबसे अधिक असभ्य माने जाते थे। वे अपने बैरी के कंकाल में खून पीते थे। पौलुस के युग में इनमें से भी कुछ लोग मसीह को ग्रहण कर चुके थे। सुसमाचार ने बहुत दूर तक अद्भुत काम किए थे। वे भी कुलुसे के कलीसिया में थे, अर्थात वे उस कलीसिया में आते थे। तब हम देखते हैं केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? यह वर्णन से परे है। मसीह सबको एक करने वाला उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक परस्पर विरोधी तत्वों को एक करता है। मसीह यही करता है। हम सब उसमें एक हैं क्योंकि हम उसकी रचना हैं। स्मरण रखें कि हम कुलुसे की पत्री के व्यवहारिक भाग में हैं। हमने पूर्व के अध्ययनों में देखा था कि प्रभु यीशु परमेश्वर की परिपूर्णता है, वह कलीसिया का सिर है और विश्वासी उसमें सिद्ध होते हैं। हमारी सब आवश्यकताएं मसीह यीशु में पूरी होती है, मानवीय परंपराओं या तत्व ज्ञान में नहीं। मेरे मित्रों, अब हम क्योंकि मसीह यीशु के साथ पुनर्जीवित हैं, अतः हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहां प्रभु यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। हमने देखा है कि इससे निजी पवित्रता प्राप्त होती है। पद 12 से आरंभ करके हम देखते हैं कि इससे हमें परस्पर संबंधों में भी पवित्रता प्राप्त होती है। पद 18 से 21 पारिवारिक संबंधों में पवित्रता की चर्चा करते हैं और तब पद 22 से 25 कार्यालय में पवित्रता की चर्चा करते हैं। मसीही जीवन घर में, कार्यालय में, समाज में प्रभु यीशु की परिपूर्णता का प्रदर्शन है। मेरे प्रियो, पौलुस ने पुराने मनुष्यत्व की आदतों के त्याग का उल्लेख किया है। अब वह उन बातों का उल्लेख करेगा जो नए मनुष्यत्व को पहनना है, लेकिन इसके बारे में हम अपने अगले अध्ययन में देखेंगे। आज हमारे अध्ययन का समय यहां पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपने देखा है कि आप पुराने मनुष्य हैं या नए मनुष्य हैं, आपने पुराने कपड़े पहने हुए हैं या नए कपड़े पहने हुए हैं। आपको स्वयं में देखना और जांचना है। प्रभु आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अगर हमको